वर्तमान जिनके गुणों के ज्ञान में वे वर्तमान महान विचरे देखो इस अंतिम गाथा में जो बन पड़ रहे थे वो शब्दों में लिखा है तत्वात को जो जानते प्रत्यक्षया जन शास्त्र से तत्वात को जो या तो प्रत्यक्ष जाने या शास्त्रों को पढ़े जाने के लिए आप कल का प्रश्न था ना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होना चाहिए प्रत्यक्ष गुरु का समागम होना चाहिए तो जिन शास्त्र भी सीखा ना इसमें ठीक है जरूर जाता प्राकृत की गाथा उठा के देखो मैंने इसमें अक्षर का अनुवाद किया उसमें बिल्कुल भी ऐसा फर्क नहीं हो रहा है कि अपनी तरफ से अनुवाद तो उसमें क्लियर होता है ना दक्ष या दिन शास्त्र से दृढ़ वो क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए यदि शास्त्रों को पढ़कर स्वाध्याय करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं होती होती तो आचार्य शास्त्र स्वाध्याय पर बिना भजन नहीं देते क्या हमारा दूसरा प्रयोग नहीं क्या हमें तो आत्मा का कल्याण करना आत्मा का अनुभव करना है सम्मा दस की प्राप्ति करनी है मोक्षों को इतना तो लक्ष्य है ही ना कि हमें देह को छूटने से पहले देह से धन भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का ध्येय बन जाए हमारे धन का सुध्येय बन जाए तो इसके लिए फिर स्वाध्याय कोई उपयोगी नहीं होता तो कल तो हमको कहते हो गुरुदेव दिन में तीन दशक क्यों कराता स्वाध्याय तो करा देते पर आज समझ लीजिए कि जमाने की अच्छाई से बुराइयां के जमाने में बहुत है तो सारे लोग बखान करते हैं उनका क्योंकि वे सब उसका अनुभवी है लेकिन मैं अच्छाई बता रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री के साथ साथ उनको हम एक प्रवचन करते हुए इसी समय सारा जी शास्त्रों पर साक्षात देखते तो प्रत्यक्ष माने ऐसे कि नहीं हमें तो गुरुदेव का समागम है अब वो एक प्रत्यक्ष है कि नहीं और प्रत्यक्ष में क्या है जैसे आचार्य ने ऐसा लिखा है कि तुम क्यों भगवान 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 की बात करते हो समोसा में जाकर तुम इन चमड़े की आंखों से तो भगवान का शरीर ही देखते हड्डी और चमड़ी का बना हुआ खून का नाश्ता पहनते वहां जाकर तुम्हें क्या दिखता है देख खराबी तो तुम्हारी आंखों में है कि चमड़े की आंखें वो चमड़े देखें कान में मरेगा और जहां रही बात हम बैठे ना ऐसा कहा तो हम बता रहे हैं जो भगवान ने बात कही थी वही बात हम बता रहे हैं और शास्त्र कहते हैं कि हम बता रहे हैं कृष्ण साल में जिनवाणी को नित्य बोधक कहा है नित्य बोधक मतलब आप समझते हैं तो अभी घंटे आपको उपलब्ध है कोई भी कैसा ही गुरु हो ऐसे भी गुरु थे जिन्होंने एक एक शिष्य के लिए शास्त्र लिखे परमात्मा प्रकाश नामक जो शास्त्र है वो आचार्य ने जो इंदु आचार्य ने वो प्रभाकर नाम के शिष्य के लिए लिखा पूरा आदि से अंत तक तो शिष्य कितना भाग्यवान होगा कि एक शिष्य के लिए उन्होंने पूरा शास्त्र लिखा है तो उसे तो वे साक्षात कर प्रभाकर को सामने था और वे प्रभाकर को तो पढ़ाई देते पढ़ाई गए होंगे है ना तो शास्त्र भी लिखा साथ में इसलिए अपने विकल्प को हूं मन में और उसने कहना चाहता हूं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्वाध्याय के प्रति जो हम लोगों में इतनी लगन है और बढ़ रही है गुरुदेव के प्रताप से उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न खड़ा नहीं हो और विघ्न का मतलब यही नहीं है कि कोई हमको यहां से उठा दे स्पीकर छीन ले हमें बोलने नहीं दे विघ्न का मतलब है हमारे चित्त में एक खड़ा हो जाए कि अब तो बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ने से क्या होगा तो अनुभव करें, तो तुमने ये विघ्न खड़ा हो गया, ये मिथ्या तो नाम का विघ्न है, पूछा क्या तुम्हारे चित्त में ही विघ्न खड़ा हो गया ना, पढ़ने से क्या होता है, बहुत पढ़ लिया, जितना गुरुदेव ने पढ़ लिया था उतना पढ़ लिया तुमने। मैं दूसरे का आपको उदाहरण नहीं देना चाहता, तो गुरुदेव ने फिर भी पढ़ना चालू रखा था अंतिम समय तक, तो तुम्हें कहना बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, अब थोड़ा ऐसा करें कि हम अपना ध्यान, मुझको भी आकर के लोग ये कहते हैं ऐसा भी बहुत पढ़ लिया, बहुत सुना लिया आपने, बहुत सब कर लिया, अब बंद कर रही, अब आप तो अपने में चलेगा। क्योंकि जिनवाणी को मैं आपको सुन रहा हूँ, गुरुदेव की वाणी को एक अक्षर दे करके, वो भी उसको पसंद नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं और उसको बहाना ये है कि तुम आत्मा में जाओ, हमारा बहुत कल्याण चाहता है वो। लोग तो ऐसी भावना करते हैं कि आप सताई हो और हमेशा हमें सुनाते रहे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो साक्षात आगे मुंह पे कहते हैं क्या? मैं आपको जो गाथाओं का मैं पाठ करा रहा हूं उनमें बहुत मर्म है, और वो एक व्यवस्थित क्रम से कैसे हम सुवालिका शुरू हुआ ना सुपर्णमालिका, वहां से यहां तक आए हैं, करीब 10 मिनट में वो बताना चाहता हूं। आपके पास हो तो आप इसको चालू कर
देते
हैं, हम कहा था कोई गाथा नहीं, गाथाओं से हम मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरह अपन यहां तक आए हैं, आपकी उसकी एक एक गाथा से आपको रास्ता, एक एक कदम का रास्ता कैसे बढ़ा है आगे हमें, उससे आपको इसके स्वरूप का भ्रमण होगा। चलो देव गुरु यति अर्चना अर दान उपवास आदि में अर शील में जो लीन शुभ उपयोग मय हुए आत्मा, अब समझ में आ गया, क्योंकि बदलने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें हैं शुभ भाव हैं, देवसार गुरु की अर्थ पूजा भक्ति दान उपवास और शील अन्न दाने का पालन करना, ये सब ब्रह्मचर्या, ये सब शुभ उपयोग में है, और इस शुभ उपयोग से दूसरी गाथा में लिखा अरे स्वरूप योग से जो युक्त वह तेज गति और देव मानुष गति में रह प्राप्त करता, पांच इंद्रियों के विषय सुख को प्राप्त करता है, स्वरूपयोग वाला पांच इंद्रियों के विषय सुख को प्राप्त करता है। अब यहां से उनका टोन क्या बदलता है कि ये जो विषय सुख प्राप्त करता है तो इन चारों गतियों में विषय सुख है, मतलब देव गति मनुष्य गति ये भी जहां ग्रंथ गति तीन में लिखा ना कि तीन में शुभ भाव से जाएगा और वहां विषय सुख प्राप्त करेगा। तो देखो फिर एक इकहत्तर की गाथा ने कहा देव से है सिद्ध देवों के निय स्वभाव क्या, ये बात उपदेश से सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध है माने जिनवाणी में कही है, अनंत भगवान ने उपदेश में ये बताई थी कि देवों के भी स्वभाव सुख असली सुख जो होने चाहिए वो नहीं है, क्या है विषय सुख है, देवों के नहीं है स्वभाव सुख क्यों, कृतन वेदना से दुखी वे दे। देव तन वेदना से दुखी, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इसलिए पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़ते हैं ना तो मैं सुनता हूं तो मेरा रस परिपाक होता है, तो मुझे चाहता हूं कि आप भी पढ़ें तो आपको ऐसा रस परिपाक हो, इसके लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि वे देव बसंत भाई गाय काल से दुखी है, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि वे तो बहुत सुखी है, उन्हें एक बीमारी नहीं है, कैंसर वैंसर कोई जुकाम तक नहीं होता है, पैदा होते ही एकदम जवान तंदुरुस्त खूबसूरत सुंदर एक से एक बढ़िया एकदम होते हैं। तेरा दंडर दंडर भी इनके बहुत अच्छे भगवान होते हैं, बहुत अच्छे, इनकी कोई ऐसी बाहर की कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। वो तो भवनवासी दंडर जो थे अपने हिमदेव माने जाते हैं, धर्म ऋषि जी वहां मर के नहीं जाता है, लेकिन वहां उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ख्याल नहीं ना। लेकिन जब शरीर सुंदर है, शरीर स्वस्थ है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, आज तक सिर में दर्द न हुआ है न कभी होगा जन्म से लेके मृत्यु तक, और कितने कितने सुखों का वर्णन अपन ने सुना है जिससे हमारा मन ललचाता है। तो वो हमारा मन की ललचाहट थोड़ी कम हो इसके लिए कहते हैं कि देव तन वेदना से दुखी है। अब हमें समझ में नहीं आता इसमें इतना स्वस्थ शरीर है, हमें तो एक बीमार रहते हैं हमेशा, तो मेरी बहुत तकलीफ है और तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन बीमार रहते हैं, हमें बीमार भी नहीं रहते। तो तन वेदना से दुखी क्यों है कि उनको जो चाहिए वो तत्काल उपलब्ध होता है शिक्षा मात्र से, तो सब सुख उपलब्ध। अब उसको सुख मानते हैं भोग को, और वो उपलब्ध है फिर वो संवेदना से दुखी, यानी स्पेशल इस बात को लोग आरोप किया कि संवेदना से दुखी मैंने क्या कि उन भोगों को भोगने की जो तीव्र इच्छा होती है उससे शरीर में जो उत्तेजना होती है, समझिए ना आप, इस पर समय मेरी संबंधी समझ लो, रसमानी समझ लो, खाने की चीज इच्छा हो, कोई चीज स्वाद आपको अच्छी लगती हो तो एकदम गलत पैदा होती है, मुंह में पानी आ जाता है, ज्ञान इंद्री की सुगंधित पदार्थों को जान पहनने की, तो ये जो हमको तीव्र इच्छा होती है तो उसके भोगने के बीच में जो कल बताया था ना कि 3 घंटे बाद खाना मिलेगा, वो 3 घंटे जो दुख होगा उसको तनवेदना कह रहे थे, और जब भोगना शुरू हो जाएगा तब भी तनवेदना चालू रहेगी, वो बताई थी कल सिद्ध करके, और अंत में बाद में भी तनवेदना। तो तनवेदना यानी वो जो विषय के साथ की भावना है जिसे हम उपलब्ध होकर बहुत तृप्त होना चाहते हैं, जिसे हम देवगति चाहते हैं, उससे भी दुखी है, वो दुख है जिसको आप सुख मान के बैठे हो, वे देवों के नहीं है स्वभाव सुख, और तन वेदना से दुखी वे क्यों कि तुम्हें कैसे मालूम कि तन वेदना से दुखी, हम तो यहां एकदम शांति से रहे थे, अब हम तन वेदना से दुखी हैं इसका तुम्हें कैसे वादा हुआ, वो देवों को भी तुम्हें है तो वो कहते हैं रमणीक विषयों में रमे, जरा पंखा बंद हो जाए एसी बंद हो जाए फिर भी क्या कहते आजकल एसी में क्या है, ये जो हमारा अभी हमें ये सी नहीं है अब वेदना हुई ऐसा नहीं है, अब वेदना हुई ऐसा नहीं है, बल्कि वेदना ही थी जो उसका उपभोग हो रहा था, वह वेदना मौजूद थी 24 घंटे, पर एक गोली खाली थी दर्दनाशक, तो वो दर्दनाशक गोली से आपको थोड़ा मालूम नहीं पड़ रहा था, जब तो वहां वैसे ही कर देता था, संवेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। अब देखे कौन नर नारकी त्रियंत और सुर, अभी इनने एक नार की पर्याय छोड़ रखी थी, 3 की बात करी थी ना, अब इनमें उनने 4 गतियां पकड़ी, नर नार की त्रियंत सुख सुर यदि देह संभव दुख को, मान देह से उत्पन्न होने वाले दुख को अनुभव करें, आगे करने यानी वो चारों गति के बीच इतनी समय देह संबंधी दुख का अनुभव करते हैं, ध्यान से सुनना, चारों गति के बीच यदि इतनी समय देह का दुख को अनुभव करते हैं तो फिर शुभ अशुभ के भाव दो प्रकार के क्या होंगे, शुभ भाव से देव गति में गए थे, अशुभ भाव से नर गति में गए थे, और दोनों ही देह दुख का तन वेदना से दुखी हैं और दुख का अनुभव करते हैं। तो जब दोनों ही एक साथ दुख अनुभव करते हैं, कल्याण जो दुख इतना बड़ा अंतर है ना, उसको तो बिल्कुल गौण कर रहे हैं, पर जो अंतर नहीं है उस पर आपका ध्यान आकर्षित है।
देखो उसमें फर्क क्या रहा
है, ये जो मूल कथाएं हैं ये आचार्य प्रतिबंध की है, हम लोग सबसे जल्दी में अनुवाद किया है जैसे आपकी समझ में ठीक है आ रहा। तो ये हम भी कोई प्रोचन नहीं कर रहे, गाथाएं सुना रहे आपको, तो हमारी बात आचार्यों की बात से तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो नहीं सकती, हम आचार्यों की बात को ही आपको सुना रहे हैं ना, इससे बढ़िया और क्या होगा। बीच बीच में हम बात करने लग जाए तो वो आचार्यों की बात से हटके बात होगी, उदाहरण देंगे तो आचार्यों की बात से मूल में लिखी है, तन वेदना से दुखी वे नवनीत विषयों में हमें नर नार की त्रिरंग नर यदि देह संभव दुख का अनुभव करें तो फिर ध्यान जो कैसे शुभ सब त्रुपयोग के दो भेद के मिल से क्या फायदा, त्रुपयोग शुभ है और अशुभ है ये कहने से क्या फायदा। हम ही कहेंगे कि उस शुभ से पुण्य बनता है, अशुभ से पाप बनता है, तो अब जब फर्क ही नहीं दुखी हैं पुण्योदय वाले पाप उदय वाले, तो इनके दो भेद करने से क्या फायदा पुण्य पाप के, और दुख ही है सब दुखी है ना चारों बची के जी दौलतराम जी ने छठा बच्चों ने पूजा करने किया, भगवान की पूजा करने हम खड़े होते हैं तो चारों बच्चों के दुखों का वर्णन करते हैं, अपना भगवान की जय मान रहे क्यों आदि स्वर महाराज हो मारी दीन तनी सुन भीन थी, मेरी दीन दीन की विनती सुनो, हे कौन हे आदिनाथ भगवान, ये चारों गति के मान मैं दुख पायो सो सुनो, ये चारों गतियों में मैंने जो दुख पाया है वो आप सुनो, भगवान को सुना इनकी जो मालूम तो है ये चारों गति में दुख है और पाया है और अपना अनुभव भगवान को सुना है, भगवान कहते मुझे पता है कहने सुनो शांति से सुनो कह रहा मतलब वो ही बात हम कह रहे ना। देखो अब मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं, उपदेश से है सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रहे, नर नार की त्रिरंत सुर यदि देही संभव दुख को अनुभव करें तो फिर कहो उपयोग कैसे स्वभाव है ना। अब वज्रधर अर चक्रधर सब पुण्य फल को विरोध थे, वज्रधर माने इंद्र और चक्रधर माने चक्रवर्ती, वज्र इंद्र का जो हथियार है ना जिससे वो लड़ता है सब वो वज्र है, इसलिए जो वज्रधर बोलते हैं और चक्रवर्ती का है चक्रवर्त में इसलिए चक्रधर बोलते हैं, वज्रधर और चक्रधर ये पुण्य फल को रोक दे और पुण्य का बयान कर है ना। देव वज्रधर अर चक्रधर सब पुण्य फल को भोग दे तो क्या होता है, देहादि की वृद्धि करें पर सुखी हो ऐसे लगे, शरीर कोई बढ़ाते हैं लेकिन हमको ऐसे लगते हैं बढ़ाते हैं सुखी वे तो दुख भोगते हैं क्या, और हमें कैसा लगता है ये बहुत सुखी है, स्वभाव से उत्पन्न विधिविध पुण्य यदि विद्यमान है तो अगर हम हमने स्वभाव करेंगे उसके उदय में हमारे पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य है जगत में, स्वभाव से उत्पन्न विधिविध पुण्य यदि विद्यमान है तो हमें ऐतराज नहीं है, है पुण्य लेकिन वे करते क्या है, जो नीचे की पंक्ति में तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करें, वे सभी हमको देवलोक में भी पांच इंद्रियों के विषयों को भोगने का भाव, भोगने की इच्छा, विशेषणा, तो इच्छा जो महादुख है वो पैदा करते हैं। वो पुण्य क्या है? क्या किया तुम्हारे पुण्य ने? देखो पुराने के जमाने में घर से पत्नी अंदर से थाली पूरी लगाकर लेके आती थी और हम बाहर बैठते थे तो वो हमको परोस देती थी, तो हम चुपचाप से खा लेते, जो वो लाई वो हम खा लेते। पुरुषों में और महिलाओं में इतना था, तो पुरुष अपने मन का नहीं खा सकता था जो पत्नी लगा के ले आया। क्यों? हम कह हमें आज थोड़ा मीठा खाना है, मेरी तो लड़ाई होती है, खाते ना ना हम सब, और पत्नियां तो खुद ही क्या लग जाती थी। ज्यादा पुण्य का होते मन के था ना कि मुझे ऐसा चाहती थी ऐसे खाई बनती थी। अब हमने बहुत तरक्की की, डाइनिंग टेबल बना ली, बहुत बढ़िया है ना। और डाइनिंग टेबल में सब चीज पारदर्शी बर्तनों में, पारदर्शी समझ गया, हमने उसके क्या क्या माल रखा है सब उसमें जाए। और हमको जो इच्छा होगी घुमा घुमाएंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, वो खाएंगे। अब तुम्हारे खराब ही नहीं रहे, जो पत्नियां खाएंगी हम करो देंगे वो खाना पड़ेगा, हमको नहीं है। अब हमको जो खाना होगा वो खाएंगे। तो वो जो आपने डाइनिंग टेबल लगा ली और सजा ली जो बहुत बढ़िया, इसमें हिलना भी नहीं पड़ेगा, वो घूमे हम नहीं घूमे। जो सामग्री हमें चाहिए वो हमारे सामने आए, हम बिल्कुल ऐसे करने लगा। तो वो कैसे आचार्य क्या कहते हैं, तुम्हारे पुण्य के वजह से ही ऐसा होगा ना, पाप के वजह वाले तो उसी में रसोई बनाते, उसी में बैठ के खा लेते जमीन में, फिर आपको उसी में बिस्तर लगा देते। तो तुम्हारे सब श्रेष्ठियों को है ना, हमने 40 साल पहले 50 साल पहले खुद मुंबई के जौहरी बाजार के आसपास, भुवनेश्वर के आसपास, उन्हीं कम क्या बोलते हैं खोलियां, कैसी खोलियों में देखा है कि उसी में खाना बन रहा है, उसी में रात को सो रहे हैं, वहीं में एक पलंग में सारे बिस्तर लगा दिए, कितने ऊंचे हो गए, कोई बैठक बन गई, सबको देखा है। देखे के नाम गिना सकते हैं, सबके घरों में जाके हम उस समय आज से 50-60 साल पहले खाना खाके आए। मैं 63 साल से मुंबई प्रचार करने आता हूं, जो घर तो पहले नहीं हुए होंगे अभी। आप जब बढ़िया आपने टेबल लगाई ली और बढ़िया, क्यों तो सब चीज सामने दिखाई देती है। इसमें क्या लिखा कि वे करती क्या है, पुण्य के उदय से वो तुमने ये सुविधाएं जुटा ली तो करती क्या है, तो कहते हैं विश्लेषणा पैदा करी। तो तुम्हें खाने की इच्छा ही पैदा तो करेंगी, होना तो ये चाहिए कि जो हमारे लिए चीज नुकसान करती है वो तो हमारे सामने आए नहीं, तो हमें इच्छा भी नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। अब हम खा तो सकते नहीं है क्योंकि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो नमकीन भी नहीं खा सकते और मीठा भी नहीं खा सकते। क्यों? अब देख देख के दुखी हो गए, विश्लेषणा पैदा करें। आप समझ गए ना, विश्वरक के जो देव हैं वे तो भोग सकते सब तरह देह से तंदुरुस्त है, सब तरीके से भोगने की सामर्थ्य उनमें है, लेकिन हम तो ऐसे पुण्यहीन हैं कि हमें भोगने की सामर्थ्य भी कहां है, क्या हम खा सकें, थोड़ा सा चकनो बस बोले लो, नहीं थोड़ा सा थोड़ा पुण्य बनाया है आपके लिए, थोड़ा इसके लिए चकने तो नुकसान जाए करेगा तो नुकसान, क्यों लेकिन थोड़ा सा। तो दो जगह मैं पढ़ता हूं, देखो वज्र धन और चक्र धन सब पुण्य फल को भोगते, देहादि की वृद्धि करें पर सुखी हों ऐसे लगे, स्वभाव से उत्पन्न विधि विधि पुण्य यदि विद्यमान है तो देश अधीश लोग में विशेषणा पैदा करें। अब कल इसका पाठ आप करेंगे तो आपको अलग आनंद आएगा। इसके लिए मेरी मेहनत कर रहा हूं। अरे दिन की उदित तृष्णा दुख से संतप्त दे हे दुखी दिल भी आमरण में विषय सुख ही चाहे। ये गजब की बात है। वो कहते हैं कि दिन की तृष्णा उदित है। क्या किया वो देवों की तृष्णा, वो पांच दिनों के जो भोग में जो मौजूद है ना, तो उनकी तृष्णा उदित है ना। अभी देखिए, अभी तो मैंने ये उदाहरण दिया ना दक्षिणायनी का, देखो दक्षिणायनी देवों का। फिर ऐसे ही हमने पर्दा मर्दा हटा दिया, बिल्कुल पर्दा नहीं, ये नहीं ये नहीं, सब बिल्कुल सब नंगा बंजारों तरफ कर दिया, तो वे क्या करेंगे? नहीं करेंगे, विशेषणा पैदा नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? मतलब इससे क्या होगा? ऐसी एक एक नहीं, बढ़िया बढ़िया बाग बगीचे इंद्र भलेर सब रहे हैं सामने, तो वो क्या करेंगे? सुनने की विशेषणा पैदा करें, देखने की विशेषणा पैदा करें, सुनने की विशेषणा पैदा करें। गाड़ी में चलते हैं तो लगा दो गाने में, गंदे गंदे गाने क्यों? हमारे विद्वानों ने फिर कोशिश करके रहा कि ये संगीत तैयार किए आप लोगों के, आप चाहें तो गंदे गंदे गाने बंद करके इनको लगा सकते हैं ना। तो वो कहते हैं पांच इंद्रियों के विषय विशेषणा पैदा करें, जिनकी कृष्णा उदित है वे सुख से संतप्त हैं, जिन्हें आप सुखी समझ रहे हो। दुख से संतप्त वे हैं दुखी, फिर भी स्पष्ट रूप से दुखी हैं। आमरण जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक विषय सुखी ही चाहते। ये आमरण का अर्थ है। अच्छा, आमरण का अर्थ भी तुम बताओगे, हम इतना भी नहीं जानते, नहीं जानते। आमरण माने ये नहीं कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम चाहते रहेंगे। तो क्या है? आचार्य ने जोंक का उदाहरण दिया है। जोंक जानते हैं, एक कीड़ा होता है जो अपने शरीर में जहां गंदा खून होता है ना, जहां दाल होती है, और क्या क्या बोलते हो बीमारी को, जो भी समझ लो वह गंदा खून जहां होता है उस पर वो चेंज जाती है, तो वो सारे गंदे खून को पीता है। जोंक समझते ना, वही जो भी कहते होंगे, तो वो कहते जैसे वो उसे वहां से कोई उखाड़ना चाहे हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। तो उसे संसी से भी पकड़ के हटाएं तो भी नहीं हटा सकते। आम आरण जब तक मर नहीं जाए तब तक वो छोड़ेगी नहीं, तो मरेगी काय से? तो इतना पीती जाती, इतना पीती जाती कि उसका पेट फट जाता है। तो मतलब इतना इतना दुख है, आमरण दुख हो, इतना दुख हो तो भी उस विषय को हमने छोड़ दिया। कौन? मनुष्य देव नाग की तरह सब, और देवों में सर्वासिद्धि के देव जी आ गए समझ लेना, उन्हें किसी को नहीं छोड़ा। सारे मनुष्य आ गए चक्रवर्ती सामान्य आदमी, न गरीब को छोड़ा न अमीर को छोड़ा, सभी की एक ही हालत है। पांच इंद्रियों के विषयों में भोगों में निरंतर रहना और रहते रहते आ मरण, मरण की कीमत पर भी ऐसे लोग मिलेंगे। ये डॉक्टर लोग कहते ये नहीं खाओ ये नहीं खाओ, सब मजा खत्म कर दिया खाने पीने का, एक दिन तो सबको ही मरना है। हम तो आते हैं, हम तो अपने मन का आयु खाना है। ऐसा बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने कहते और खाते सुना, मैं हार्ट का पेशेंट हूं ना, मैं भी खाता हूं हार्ट वाली चीजें, मेरे सामने बैठ के सब हार्ट वाले, हम कहते तो हमसे यही है कि साहब आप चिंता मत करो, मैं भी हार्ट का पेशेंट हूं, मेरे यहां सब मिलेगा बढ़िया, लेकिन तो हार्ट की हिसाब से। और फिर उनको खा भी देखता हूं, कहते आप ये क्यों खा रहे? अरे मैं परवाह नहीं करता, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, वोट डालने की बात नहीं है। यहां का प्रसन्न भी नहीं है। समझ में आया, देखो बड़ा आए इंद्रिय सुख अरे फिर विषय सुख ही चाहते अब आया इंद्रिय सुख सुख नहीं जो कह विषम बाधा सहित है फिर बंध का कारण दुखद पर तंत्र है निश्चिन्न कह में आई ना फिर पुण्य पाप में अंतर ऐसे समझा दिया ना अब कह रहे वो पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बाधे संसार सागर में भ्रमे मन मुए से अब आपकी किरण विकास काल में आए इस तरह से को समझाते समझाते यहां तक आए हैं विदितार्थ जन पर द्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करे शुद्धो योगी जीव दे तन जनित दुख का क्षय करें वो ऊपर कहते हैं तन तन वेदना से दुखी नहीं अब तन जनित दुख का क्षय कौन करते कोई बात आ रही है तो कहते विदितार्थ जन विदितार्थ जन पर क्या विदित माने जाना है अर्थ माने पदार्थों को जिन्होंने ऐसे जन माने समझा निश्चित करना देखो हमने विदितार्थ जन है ना देखो विदित माने जाना है अर्थ माने आत्मान पदार्थ को जिन्होंने ऐसे जन माने व्यक्ति परद्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करें है ना जो परद्रव्य में राग द्वेष नहीं करते हैं समझा निश्चित हैं ज्ञानी हैं शुद्धोपयोगी हैं वे जीव तन जनित दुख का क्षय करें शुभोपयोगी तन जनित दुख का क्षय नहीं करेंगे शुभोपयोगी जीव शुभोपयोग तन जनित दुख को पैदा करेंगे ये समझा रहा शुभोपयोग की बात बताए ना शुभोपयोग की क्या पॉजिशन है शुभोपयोग के पीछे हम पागल हो रहे हैं है ना सब छोड़ पापा रंग शुभ चारित्र में उद्यत रहे अब वो बता रहे हैं कि सब पाप छोड़ दिए तो सब शुभ का उपदेश देते हैं सारे धर्म वाले अपने जैन धर्म वाले भी सारे पंथ वाले दिगंबरों में भी सब एक जगह सारे हिंदुस्तान के प्रकाश नीचे कन्याकुमारी तक चले जाओ हैं समझे ना लेकिन एक ही बात पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो एक कुछ गुंडेश्वरी नहीं होते तो हमको ये बात मिलना थी बोले बनवाते काने बनना दुर्लभ है पर आदमी यहां इतने लोग सुन रहे हैं अपन कर रहे हैं बात लेकिन सारे जगत में जाओ तो बहुत कठिन है साहब बहुत कठिन है साहब बहुत कठिन है साहब तो इस तरह प्रकरण निकाला अरे जी ये प्रकरण मैं चार जगह शुरू कर चुका चार जगह मैंने करवा दिया कठिन बहुत है मेरे से मैं शुरू किया था तो मैं तीन दिन किया और फिर वो पीछे पड़ गए कि नहीं था नहीं था मैंने भी सर तो नौ कारण शुरू किया तो मैंने सात दिन पे आठ दिन पे नौ कारण थे ना फिर मैंने दिल्ली में शुरू किया परिसर में तो संदेश में शुरू किया तो संदेश में शुरू की तो सात दिन तक संदेश में कर अब सुनिए आज हजार मुझे जयपुर में इस बात को कहना पड़ा मेरा मतलब सुन लिया इसलिए इसकी दुर्लभता देखो जो अपने मुमुक्षु हैं मुझे तो इसका रस परिपाक होता मेरे दिमाग में ही घूमता रहता है जो जो भी मेरा विषय चलता है जो भी झंडा मेरे दिमाग में घूमता रहता है तो मुझे तो इसका रस परिपाक होता मुझे तो उसमें आनंद आता कहना ही ना लेकिन ये नहीं साहब ये नहीं साहब ये नहीं साहब जय सुदर्शन ले लेके आ जाते हैं देखो शुद्धोपयोग सब छोड़ पापा रंग सुर चारित्र में उद्यत रहे पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना रहे वे शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे हमें शुद्धात्मा प्राप्त करना है ना वो स्वर्ग और अपवर्ग पद दर्शक दिनेश्वर आप ही लोकाग चंद्र पद संयम ही सर्वशासन ये जो है बीच में लेकर दर्शनाचार्य की टीका में गाथाएं आ गई हैं वो बीच में है इन्हें छोड़ देगा इससे क्रम भंग होता है ये तो मंगलाचरण अब अस्सी में अस्सी में आगे ना अस्सी में देखो देखो आगे दुर्ग गुण पर आए थे जानते अंत को दुर्गुण छह विधान मेरे आत्मा त्रिमोह उनका नाम है कि त्रिमोह को नाम त्रिमोह चिंता पर वहां अब मैं कहा था जो अब जहां से अपन वहां से यहां तक आ गए अब यहां से अपन को कहां तक जाना है किधर से कहेगा कि मुझे दूसरा कोई उपाय बताओ ये तो मैं फिर दूसरा उपाय बताएंगे कि स्वाध्याय करना इसलिए मैं वहां से 79 से पास करवाता हूं और वहां तक आपको ले जाता हूं कि रोजाना एक दफे आप पूरे विषय का रिपीट करें कम से कम समझ रहे हैं आपकी मैं यात्री की बात तो आप ध्यान में रहें पर अपन कहां चल रहे हैं ये भी आपको पता रहे इसके लिए ये बात कर रहे अब अपन अश्विनी गाथा में जितनी बात की थी उसके आगे टीका पढ़ते हैं टीका अपन ने गाथा पर जितना बोलना था बहुत कुछ बोला है टीका पढ़ते हैं पेन नंबर 141 है
पेन ड्राइव में ग्रंथ है ना
देखो अनुमय सुदृप्य अनुमय दृप्य है अनुमय के विशेषण गुण हैं और अनुमय के व्यतिरेक पर्याय हैं सर्वता विशुद्ध भगवान अरहंत में अरहंत के स्वरूप का ज्ञान होने पर जीव तीनों प्रकार से युक्त दृढ़गुण पर्याय में अपने आत्मा को अपने मन से जान लेता है ये कह रहे जो वहां पर्याय की बात आई थी ना कि पर्याय में भी समानता है तो ये है पर्याय किसे कहते हैं ये निर्णय कर जो कि हम तो पर्याय को जानते हैं फटा पर्याय में है पर्याय को क्या जानते हैं आप पर्याय पर्याय की परिभाषा क्या है निगुणों के प्रण उनको पर्याय तो यही जानते हो वो कहते थे ये संस्कृत में अमृतचंद्राचार्य की है अमृतचंद्राचार्य श्री गुरुदेव अनन्य भगत थे उनने कहा देखो कि अन्वय सो संस्कृत की तीसरी पंक्ति देखो तत्रान्वयो दृभ्यम अन्वय विशेषणाम गुण अन्वय वितरे का पर्याय ये त्रिगुण पर्याय की एक परिभाषा है और इस परिभाषा के हिसाब से हमारी और अरहंत की पर्याय समान है अभी क्या परिभाषा है अभी समाज में कुछ नहीं कर अनभय अनभय माने कोई किसी चीज का होना 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 है लगातार है उसे अनभय बोलते हैं और फिर ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है इसे वितरित बोलते हैं एक होता है अन्वय और एक होता है वितरित तो द्रव्य है अन्वय का नाम है अनाधिकाल से दृढ़ है और है तीन है हो गए तो आप क्या समझते हैं कि इसे वजन देने के लिए तीन रुपये कर दिया ऐसा नहीं है पहले है का अर्थ था दूसरे है का अर्थ है तो तीसरे है का अर्थ है हो जाए है समझिए ना तो ये क्यों कि तीनों विद्यमान है हमारे ज्ञान में तीनों विद्यमान है ना क्या आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक है रहेगा अनुभव एक सा जो रहे अनादि से लेके अंत तक कोई अंतर जिसमें नहीं आवे समझे ना उसका नाम है अन्वय और अन्वय का व्यतिरिक अन्वय का विशेषण क्या जो अन्वय वाले आत्मा है ना उसमें अनंत गुण है जो ज्ञान वाला है दर्शन वाला है चरित्र वाला है सुख वाला है बीज वाला है तो ये जो विशेषण है आत्मा के ये सब गुण कह जाते हैं तो अन्वय से द्रव्य अन्वय के विशेषण जो गुण और अन्वय का वितरित अब अन्वय के वितरित चाहे अनाधिकाल से पहले नरक में था फिर मनुष्य हुआ फिर देव गति में गया तो कहते हैं कि नरक में मनुष्य बना नहीं है मनुष्य में नरक बना नहीं है मेरे मनुष्य में देव बना नहीं है, देव में मनुष्य बना नहीं है, तो ये अनुभव का व्यक्ति है जो इसमें अनादि काल से लेके जो एक पर्याय है वो दूसरी पर्याय में नहीं है, समझना, एवं ही अनंत काल तक है। तो जो अनुभव मानो उसमें जो है वो है दृढ़, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो है वितरित, वो है परे। ऐसा पर्याय तो अनंत की भी वैसी है, हमारी भी वैसी है। इस परिभाषा के हिसाब से हमारी और उनकी पर्याय में कोई अंतर नहीं। फिर उत्पाद और व्यय, उत्पाद पर्याय में उत्पन्न होना, व्यय होना, तो उत्पाद और व्यय उनमें भी पर्याय का उत्पाद होता है और व्यय होता है। तो उत्पाद व्यय जो स्वरूप है पर्याय का, वो भी हमारा और अहंत का एक स्वरूप। अनादि काल से अनंत काल तक पर्याय से कोई द्रव्य खाली नहीं रहेगा, अहंत भी नहीं रहेगी, कोई नहीं। उन्हीं की पर्याय जैसी जैसी होती रहेगी, तो हम कहते उन्हीं की पर्याय नहीं बदली। हमारे ज्यादा अंतर दिखाई दे जाता है तो हम उन्हें बदली कहते। एक समय से दो समय तक कोई पर्याय ठहरती नहीं, उसे यदि पर्याय कहते हैं, मनुष्य पर्याय पर्याय ही नहीं, क्योंकि इतनी सत्तर अस्सी वर्ष की होती कोई पर्याय, फिर बहुत असंख्य पर्यायों का एक पिंड है, इसे उपचार से इसे पर्याय कहते हैं। तो अन्वय का जो विपरीत है वो पर्याय है। तो ये परिभाषा अन्वय व्यवहार की लगाओगे तो हमारा उनमें कोई अंतर नहीं है, ये बात नहीं है। अब यही बात है कि अंतर है, यदि अंतर ही नहीं है तो फिर अनंत ही की पर्याय को क्यों जानना, फिर अपनी को ही जान लो ना सीधे, क्योंकि मूल का नाम तो क्लियर कहा है, या आत्मा को जानने से मुह का नाम होगा, अरंत के जानने से तो मुह का नाश नहीं होगा, अनंत को जानने से तो पुण्य का नाश होगा। जानना दोनों को है। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अपने यहां गुजरात में एक संप्रदाय जैसा चला था, तो बहुत जोर दे रहा है आत्मा पर को जानते हैं, और तो मैं ही आड़े पड़ा था उसमें, उसमें मैं तकलीफ भी बहुत पाई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये तो अलगाता बिल्कुल मूड आचार्य की है ना, और हम सबको बच्चे बच्चे को बताया, जो भी उसकी नेता हमने महिमा बताई है, इसमें तो पहली बातें यहां से शुरू करते हैं कि द्रिगुण पर्याय कैसे अनंत को जान, तो अनंत लोग बात नहीं है, और उनको जानने के लिए कह रहे हैं द्रिगुण पर्याय से। अब जानते ही नहीं है आत्मा पर को, तो कैसे जाने। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, पांच वर्ष की कन्या से कहते हैं कि एक गिलास पानी लाओ बेटा, कहते ना एक गिलास पानी लाओ, ऐसा पांच वर्ष की कन्या से कहते हैं, पांच लाख के हाथी से नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो ला नहीं सकता। विवेकी आदमी तो जो काम कर सकता है उससे ही कहेगा, जो नहीं कर सकता उससे नहीं कहेगा। तो हम यदि अनंत को त्रिगुण पर्याय से जान सकते हैं, तभी तो आचार्य देव ने हमें आज्ञा दी कि तुम अनंत भगवान को त्रिगुण पर्याय से जानो, जबकि जरूरत नहीं थी, वो जानता ही नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा के जानने से मुहे का नाश होगा। लेकिन वो कहते हैं उनने पहले हमको अरहंत को त्रिगुण पर्याय से जानने की आज्ञा दी, तो कोई ना कोई अपेक्षा तो होगी ना जिससे आत्मा पर को जानता होगा। और तुम निषेध कर रहे हो तो तुम्हें निषेध करने की जरूरत क्यों पड़ रही, जब पर कोई जानता ही नहीं है, समझिए ना, तो फिर निषेध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चली बहुत दिन तक चला, जब ये अनंत भगवान को त्रिगुण पर्याय से जानो की उनने आज्ञा दी, तो उनने समानता और असमानता, अब मैं ये कहता हूं कि उनने अनंत भगवान की क्यों कही, उनने और की क्यों नहीं की, द्रौपदी के देव चक्रवर्ती की बजाय के गर्दन में बजाय के नाम क्यों ली गई, अयोध्या की दुर्गा की बजाय के नाम क्यों ली गई, अनंत की क्यों गई? क्योंकि इसमें लिखा है कि अब जो लिखा है अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त होने वाले स्वरूप की भांति है। अंतिम ताप को मैंने जो सोना है ना दबाते हैं ना, दबाते 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 जब अंत में ताप दिया उसके बाद वो 100% शुद्ध हो गया, ऐसा है उनका। तो सोने की पहचान करना है तो हम यही कहेंगे ना कि वो जो 24 कैरेट अथवा जो भी 100% उस सोने को देखो, ये कहेंगे ना तुम्हें असली सोना क्या चीज है ये जानना है तो वो असली सोने को देखो। फिर हमें अपने सोने को जानना है, हमें उसके असली सोने को देख के हमारा क्या काम होगा? हमें अपने आप तो कहते तुम्हारा ये तुम्हारा जो सोना है ये भी वैसा ही है, लेकिन तुम इसे एक तोला समझ रहे हो, एक तोला नहीं है आधा तोला समझ रहे हैं, हमने उसमें आधा खोट है और आधा सोना है, बदल में एक तोला है। तो मां बेटा नहीं समझती है कि मेरे पास एक तोला सोना है, क्यों? तो ये कहते सोना है वो असली सोना है तुम्हारे पास, वो नकली नहीं है क्या? लेकिन इसे हम तपाएंगे, उतना तपाएंगे कि जब ये उस सोने जैसा रह जाएगा, लेकिन ये फिर आधा दे जाएगा क्या? फिर ये आधा तोला होगा, एक तोला नहीं होगा। तो ये जो हमें राजवेद जाना है, जो मैल जाना है, ये हम तपाएंगे, जो भी हमारा ध्यान आ गई है ना, जो जो विधि है देवी से दर्शन में, तो ये अनंत जैसे रह जाओ। अंत में हर आदमी मेरे लिए अनंत जैसा नहीं होना बनना है, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा स्वभाव में वो बात पड़ी है क्या? और अब उस दिन से वो हम ये जानने लग गई कि ये मेरा एक तोला वजन जिसका है वो मैं आधे तोला सोने की मालकिन हूं। क्यों? तो उसका समझ ज्ञान हो गया। अभी जरूरी नहीं है कि वो अभी उसको तपाए, उनने अभी असली सोने का ज्ञान हो गया कि नहीं, यदि अनंत का स्वरूप जानकर फिर अपने आत्मा को जाने तो उसे असली आप आत्मा कैसा होता है वो तो ज्ञान हो गया। इसमें क्या लगा देखो, अंतिम अनंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त होने वाले सोने के स्वरूप की भांति सब प्रकार से स्पष्ट है, इसलिए उसका माने अनंत का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान हो जाता है। अगर तुम्हारे यानी सब आत्मा सभी आत्माएं ऐसे ही हैं, सब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, सभी आत्माओं का ज्ञान हो जाता है और आत्मा का सर्व का ज्ञान हो जाता है। सब चीज आत्मा की कोई चीज बात जानना बाकी नहीं, मैंने आत्मा को परिपूर्ण तरह से अच्छी तरह वो जान लेता है, अब कुछ रहने का काम नहीं है। यदि वो आधे तोले के में व्यवहार करे, किसी को बेचे, किसी को गिरवी रखे, सामने वाला आधा तोला के हिसाब से समझकर गिरवी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्ञानियों का सत्य व्यवहार हो गया कि नहीं हो गया? अभी वो होगा कि कब होगा कि वो विधि हम बताएंगे कि बताओ ना कि अभी नहीं जाना, डायरेक्ट ढूंढ नहीं ले जाएंगे, वो विधि बताएंगे कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा आत्मा अरहंत जैसा ही है, अब वो अरहंत जैसा बन जाएगा तो अगली गाथा में बनाएंगे बताएंगे, हमें बता दो हो जाओगे हाँ हाँ, और फिर उसकी अगली गाथा में क्या बताएंगे कि सबके आत्मा ऐसे ही है और वे ये विधि अपनाएंगे तो वे भी सब हो जाएंगे। क्या बोलो? सर्व विधि
सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि हो नमन।
81 में बताएंगे वो तो मोह को नाश करने का चालू मोह को नाश करने की विधि, और वे कहेंगे सब हो जाएंगे अरहंत, और सब सब अरहंतों ने इसी विधि से अरहंत बना प्राप्त किया है, और अपने समोसा में बैठकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से सारी दुनिया को यही विधि बताई है। व्यासी जी का हो गई, अब तेरह दिन में क्या बताएंगे, याद है आपको विद्यादि में जो मूर्ता वह वो
विद्यादि में जो मूर्ता
पूछता है वो मोरे है आगे बता दे, आगे बताते बताते कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक और वो पढ़ो पेंशन
तत्व को अति अति विषयों के प्रति और करुणा भाव ये सब मोह के
खतरनाक आदमी है, उसका अर्थ करें तो मेरे लिए बताई होगी देवकाली नहीं होगी। देखो क्या लेते हैं तत्व को अहकार से जाना, ये तो ठीक है तत्व का सही सिद्धांत होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, तो तत्व को अहकार से जाने एक लक्षण तो वो होता ही है, और दूसरा लक्षण क्या है विषयों में अति गति वो अभी बताई जी अपने मतलब क्या आए थे ना, तो चारों गति के जीवों को पांच इंद्रियों के रूप में अत्यंत रति है बताई थे, विषयों में अति रति अनंतानंदी की जीवन की, दूसरा मोह का चिन्ह यह है, और तीसरा करुणा का एक जीव दूसरे जीव को बता सकता है, बता तो सकते कि और जो कर्ण अब करना तो गुजरात की जान है, दीप दया है के सब लगे रहे हैं, कर्मों का दान होता है, मैंने विषय नहीं कर रहा सब करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ करुणा भाव को मोह के चिन्ह में गिना रहे हैं, क्या ये तीन पहचान है मोही की, तो वे कहते कैसे जाने फिर वो आएगी क्या था कि स्वाध्याय करो तो सब पता चले, स्वाध्याय करोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, मैं ये कहता हूँ कि ये किताबें आपके पास हैं और इन्हें आप घर पर पढ़ के क्यों नहीं आते, क्या करते रहते हैं मैं तो पता देखो स्वाध्याय करोगे सचमुच तो एक ही मार्ग है, आज पूज बोलने से बढ़ें तो उनकी दिव्य उनकी वाणी जो है चाहे सुनो चाहे पढ़ो एक ही बात है, चाहे सुनकर पढ़ो सुनो चाहे चक्ष इंद्री से करो चाहे चरण इंद्री से करो, तो उसको हमको करना चाहिए अधिक से अधिक, अब इन मनुष्य लोग हमको सुधारना है तो आत्मा का कल्याण करना है तो एक ही रास्ता।